देव सायनी एकादशी पर विशेष। साथियों नमस्कार, आप सुन रहे मोबाइल वाणी। मोबाइल वाणी के लिए मैं दिनकर पातुकर। वारकरी संप्रदाय एवं वैष्णव पंथ के अनुयायियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है पंढरपुर की वारी, इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जिले के सौसल विकास खंड के ग्राम देवी से विशेषकर हरिभक्त परायण नारायण महाराज सिंध जी मोबाइल वाणी के साथ रूबरू होने जा रहे हैं। नमस्कार महाराज जी।
नमस्कार जी।
महाराज जी, हम आपसे आज देवसायनी एकादशी के महत्व के बारे में जानना चाहते हैं, तो मोबाइल वाणी के श्रोताओं को बताने का प्रयास कीजिए कि आखिर देवसायनी एकादशी वारकरी संप्रदाय एवं वैष्णव पंथ के अनुयायियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है।
वारकरी संप्रदाय के लिए और समस्त विश्व के लिए देवसायनी एकादशी का बड़ा महत्व रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि परमात्मा तो 12 महीने काम ही करते हैं, लेकिन 4 माह कभी विश्रांति के लिए आते हैं। देवशयनी का महत्व ये होता है कि भगवान स्वयं चिंतन करते हुए, विश्व का चिंतन करते हुए योग निद्रा में तल्लीन हो जाते हैं। योग निद्रा लेते ही, इसका मतलब भगवान सो जाते हैं ऐसे नहीं, उनका सोना भी जागना है और जागना भी सोना है। वो तो योग योगेश्वर है, योग योगियों के परमात्मा। नींद में भी योग के माध्यम से विश्व का संचालन करने का कार्य करते हैं। और ऐसे समय में भगवान जब शयन कर लेते हैं तो उनके सारे भक्त उनके चरणों के पास में बैठकर चातुर्मास भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रवचन करते हैं, सदग्रंथों का श्रवण किया करते हैं, तो कोई साधना में रत हो जाता है। ऐसी साधना करने वाले सभी संप्रदाय और सभी धर्म के लोग जाने जाते हैं, चाहे हिंदू धर्म वाले हो, बुद्ध धर्म वाले हो या और कोई भी हो। इस पावन पर्व के ऊपर सब लोग मिलकर भगवान का ध्यान करते हुए भगवान को रिझाते हैं। अपने पुष्टि संप्रदाय में या सखी संप्रदाय में 4 महीने तो जगत का मुख नहीं देखते हैं, एकांत में गर्भगृह में परमात्मा को स्थापित करते हुए भगवान कृष्ण कन्हैया या पंडरीनाथ जी के सामने नृत्य किया करते हैं। सखी संप्रदाय के लोग बाल बढ़ाते हुए मुझ कटवा लेते हैं, सखी का स्त्री का श्रृंगार धारण करते हैं और परमात्मा को रिझाते हैं, परमात्मा तू भजन के माध्यम से हमें तेरे स्वरूप में मिला ले। और इसी तरह से देवशयनी एकादशी कार्तिक माह तक चलते हुए कार्तिक पूर्णिमा के दिन या कार्तिक एकादशी के दिन इसका उत्थापन करते हुए भगवान का आशीर्वाद लेते हुए अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान करते हैं। बहुत बड़ा महत्व इस एकादशी का है।
यह जो देवसायनी एकादशी है, इस एकादशी पर अधिकतर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में वारकरी पैदल पंढरपुर की ओर रवाना करते हैं। तो हम आपसे वारी के संबंध में भी जानना चाहेंगे कि वारी ये कहाँ से कहाँ तक होती है और इसमें जो लाखों लोग होते, विशेषकर इसमें विदेशों से भी लोग सम्मिलित होते, तो वारी का महत्व भी हम आपसे आज की इस पावन अवसर पर जानना चाहेंगे।
इसका बड़ा महत्व है पैदल चलते हुए पंढरपुर जाना। वारी का मतलब होता है आना और जाना, आना और जाना। भगवान के नगर को जाना, परमात्मा का दर्शन करना, पुनश्च लौट कर आना, फिर से भगवान के पावन पर्व पर फिर से परमात्मा के करीब जाना, फिर से उनका दर्शन करके लौट कर आना। वारी यानी आना और जाना, भगवान के करीब जाना, भगवान से नाता जोड़ते हुए प्यार भरा दर्शन करना, फिर से लौट कर आना, फिर से जाना। अपने महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय में एक ऐसी परंपरा है कि नित्य परमात्मा के नगर को जाना और फिर से अपने नगर को लौट कर आना। पंढरीचा वारकरी होई न भिकारी, पंढरीचा वारकरी हाथी माझा नेम धर्म। संतों ने ऐसा नियम बनाया है, यही हमारा नियम है कि बस भगवान तेरा भजन गाते जाएंगे, तेरे नगर को आते जाएंगे और कुछ भी हो जाए, भिखारी तो ये है नहीं, ये तो है लक्ष्मीपति परमात्मा के लाडले सद्भक्त। परमात्मा जिनकी देख रेख करते हो उनके जीवन में कौन सी बात की कमी है, जहाँ परमात्मा स्वयं भक्तों के द्वार पर पहरा देते हुए हाथ में लाठी लेकर खड़े रहते हैं। वो परमात्मा के लाडले भक्त कभी भिखारी नहीं होते, लेकिन ये नम्र भाव है संतों का। ये परमात्मा चाहे तूने हमारे जीवन में सुख दिया हो, दुख दिया हो, गरीबी दी हो, अमीरी दी हो, फिर भी तेरा भजन हम गाते जाएंगे, तेरे भजन के अलावा हम कुछ नहीं करेंगे, एक चरण पंढरपुर के ओर बढ़ाना तो करोड़ों यज्ञ के समान हो जाता है, ऐसा ऐसी मान्यता है कि संत मिलन को जाइए तेज माया मोह अभिमान, जो जो मार्ग पर पग धरे कोटि यज्ञ समान। संतों के दर्शन के लिए जाना और भगवान का नाम चिंतन करते हुए उनकी ओर बढ़ना तो करोड़ों यज्ञ का फल एक कदम बढ़ाने से मिलता है। तो और तीर्थ क्षेत्र जो है, और तीर्थ क्षेत्र में जाने के लिए निकलो, 6 महीने की काशी करो या 2 माह का और कोई तीर्थ व्रत करो, लेकिन उससे जो पुण्य फल नहीं मिलता, वो पुण्य फल एक कदम पंढरपुर की ओर बढ़ाने से, करोड़ों करोड़ों यज्ञ का, करोड़ों करोड़ों तीर्थ करने का या 6 माह की काशी करने के बाद जो फल मिलता है, वो सारा पुण्य फल पंढरपुर की ओर एक कदम बढ़ाने से मिल जाता है। काशी, गोदावरी, तीर्थराज प्रयाग या कोई भी तीर्थ क्षेत्र हो, सभी तीर्थ क्षेत्र से बहुत बड़ा पुण्य इस क्षेत्र का है। और यहाँ स्वयं परमात्मा निवास करने के कारण, जो पंडरीश परमात्मा है स्वयं विराजमान होने के कारण, सब लोग उनकी ओर बढ़ते जाते हैं, दर्शन करके आते हैं। स्वयं अकेला जाना कुछ और बात है, लेकिन संत ज्ञानेश्वर महाराज जी का जो वैभव है, निवृत्तिनाथ महाराज, तुकाराम जी महाराज, अन्य वारकरी संप्रदाय के बहुत सारे संत, उनका वैभव जब पंडरी की ओर चलता है तो करोड़ों लोग पैदल चल के निकल जाते हैं। राष्ट्रपति के सम्मान में जो मेजमानी या मेहमानी नहीं की जाती होगी, उतनी मेहमानी इन करोड़ों लोगों की, लाखों लोगों की समाज करता है। परमात्मा इनको संभाल लेते हैं, कोई धूप देखता नहीं, ना कोई छाव देखता है, ना कोई बारी देखता है, सिर्फ संत ज्ञानेश्वर महाराज जी के साथ में चलने वाला यही सोचता है, संत महाराज ज्ञानेश्वर महाराज जी के साथ में पंडरीश पांडुरंग परमात्मा का हम दर्शन करते हुए हमारे जीवन को पावन बनाएंगे। और इसी एक उद्देश्य से सब करोड़ों लोग पंडरी की ओर अग्रसर होते जाते हैं।
महाराज जी,
हाँ,
जो लोग पंढरपुर नहीं जा पाते, हाँ, उनके लिए सौसर, हाँ, विकास खंड में ऐसे कौन से दर्शनीय स्थल है? कहा जाता है कि सौसर विकास खंड में भी शांति ब्रह्म संत श्री एकनाथ महाराज के अनुयायी, संत नामदेव महाराज के अनुयायी यहाँ पर है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे सौसर विकास खंड के अंतर्गत भी ऐसे कौन से देवस्थान है जो पंढरपुर नहीं जा पाए, उन्हें यहाँ पुण्य लाभ प्राप्त होता हो?
जो पंढरपुर तीर्थ क्षेत्र नहीं जा पाते, उनके लिए सौसर विकास खंड में हमारी पूर्व परंपरागत जो सदभक्त हो गए, उन्होंने कुछ ऐसा स्थानों का निर्माण किया। तो पहला एक स्थान आता है हवेली मोहगांव के बीच में, स्वयंभू सिकिट परमात्मा है, जो उस जमाने में जब वहां पर अर्धनारी नरेश नारीश्वर की स्थापना की या अन्य संत आए, उन्होंने उनका कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वहां पर एक स्थान विद्यमान है जहाँ का नीम का पेड़ प्राय कड़वा होता है, लेकिन वहां का नीम का पेड़ आधा मीठा है और आधा कड़वा है, जहां पर संतों ने भगवान की स्थापना की, एक स्थान। और दूसरा स्थान ऐसा है, संत हीरामन जी महाराज, संत वाता जी महाराज, इन लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ तपस्या करते हुए अपना जो जीवन साधना अविरत करते हुए संत शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज जी के चरणों में अपनी साधना समर्पित की, और अंतिम समय में जब इनका शरीर थक गया तो स्वयं पंडरीश पांडुरंग परमात्मा माता रुक्मणी के साथ में रामाकुना में विराजमान हो गए, जहां पर दर्शन लेने से पैठन जाने का पुण्य भी मिलता है, तो पंडरपुर जाने का भी पुण्य मिलता है। ऐसा एक स्थान अपने पास में रामाकुना में विद्यमान है। कण्व ऋषि के आश्रमीय परिसर से बहने वाली पवित्र पावनी कलकल निनादिनी, पवित्र पावनी कन्हान नदी जहां से बहती है, जिसका पवित्र तीर्थ हमको पावन करते हुए अम्बोरा तीर्थ क्षेत्र में चैतन्यश्वर महादेव के करीब जाकर वैनगंगा में विलीन होता है, इसी नदी के किनारे पर, गंगा के किनारे पर बसा हुआ रामाकुना नगर, जहां पर संत हीराम जी महाराज, वाताजी महाराज, विठल रुक्मणी मंदिर में विराजमान है, वहां का दर्शन करने से भी सौसर विकास खंड के भावी लोगों को पुण्य लाभ प्राप्त होता है। वैसा थोड़ा और दो कदम यदि आगे बढ़ जाते हैं तो तीर्थ क्षेत्र आदासा गणपति और उसके बगल में धापेवाड़ा, जहां पर विदर्भ का पंढरपुर माना जाता है, वहां पर भी जाकर हम यात्रा का लाभ ले सकते हैं, पुण्य लाभ ले सकते हैं। नहीं पंढरपुर जा सके तो वहां पर जाकर भी हम चरणों में माथा टेक दे तो भगवान स्वयंभू धापेवाड़ा निवासी भगवान पांडुरंग परमात्मा रुक्मणी माता के साथ विराजमान वहां पर है, हमें आशीर्वाद देकर हमारा जीवन पावन बनाते हैं।
महाराज जी
जी,
सौसौ विकास खंड के अंतर्गत जो कहते हैं देवी ज्ञानेशा थी और बेडी में ही कंडेली, इस वाक्य के वाक्य से हमारे श्रोताओं को परिभाषित कीजिए।
हाँ, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। संत ज्ञानेश्वर महाराज जी का कृपा पात्र बना हुआ हमारा नगर देवी, और इसको हमने ज्ञानेशा थी, संत ज्ञानेश्वर महाराज जी का जहां पर वास्तव्य है सौसर विकास खंड में, उस देवी नगर का बड़ा अपना अद्भुत महात्म्य है। इसका महात्म्य कहने से हम आपको क्या क्या बताए, जानते ब्रह्म संत एकनाथ जी महाराज और जगतगुरु संत तुकाराम जी महाराज, इनके साथ में स्वयं संत ज्ञानेश्वर महाराज यहाँ पर विद्यमान है, और यहाँ की मिट्टी का ऐसा महत्व है, यहाँ की मिट्टी में संत साधक और संत सेवक इसके पहले भी पैदा हुए, आज भी बने हुए हैं, और जो एक आलंदी ज्ञानेश्वर महाराज जी की, उसका जैसा महत्व है कि उस भूमि में प्राय कीर्तनकार, मृदंग वादक, भजन गायक या संतों की, सिद्धों की भूमि है, वैसी सिद्ध भूमि यहाँ पर देवी में भी समाधि स्थल ऐसा माना जाता है, समाधि स्थान जैसा वहां पर सिद्धेश्वर भगवान है, उसी तरह से यहाँ पर हमारे नगर में स्वयं भगवती मुक्ता देवी विद्यमान है, भगवान भोलेनाथ विद्यमान है, और कुछ सिद्धों ने यहाँ पर समाधि ली, उस ऐसा अज्ञात स्थान है जिसको समाधि स्थल कहा जाता है। ज्ञानेश्वर महाराज जी के करीब में आलंदी में वैसा सिद्ध बैठ है, वहां पर यहाँ पर भी सिद्धेश्वर भगवान बैठते हुए वहां पर कई सिद्धों की समाधियां है। उसके पश्चात में यहाँ पर संत हीरामन जी महाराज, वाताजी महाराज, इनके पावन सानिध्य का लाभ मिलते हुए वारकरी संप्रदाय का बड़ा विकास और विस्तार होता रहा। कनीराम जी महाराज वाखरीकर, इनकी परंपरा से ये नगर जुड़ा हुआ, और उनके माध्यम से यहाँ पर बड़ी संत साहित्य की भेंट हुई, और मराठी संत साहित्य वारकरी संप्रदाय का इस नगर का अध्ययन का एक केंद्र बन गया, और उस केंद्र में पढ़ने वाले विद्यार्थी आज पूरे महाराष्ट्र में या हिंदुस्तान में जगह जगह पर जाकर अपना नाम रोशन करते हैं, नगर का नाम रोशन करते हैं, सौसर विकास खंड का नाम रोशन करते हैं। आज भी करीब करीब 50 युवा लड़के, कोई इंजीनियर है, कोई शास्त्री है, अपना सूर्यकांत शिंदे महाराज स्वयं इंजीनियर है, हमारा अनिरुद्ध महाराज शिंदे शास्त्री वेद पढ़ रहा है, ऐसे पवन महाराज उत्तम मृदंग वादक है, तो हमारा चंद्रकांत बड़वाई उत्तम मृदंग वादक है, ये सब आलंदी से पैदल चलते हुए पंढरपुर के वारी में अपनी अपनी कला से उस भजन और दिंडी को सजा रहे हैं, और सजाते हुए बड़ी दिव्यता से आज पंढरपुर में उनका बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, और सब लोग पंढरी क्षेत्र में संत ज्ञानेश्वर महाराज जी के साथ में पैदल चलते हुए आलंदी से पंढरपुर पहुंच गए हैं। इस नगर का उत्तरदायित्व या वारकरी संप्रदाय से जुड़ा हुआ रहना एक बहुत अनोखी देन है। प्राय महाराष्ट्र के लोग इधर आया करते थे, आज मध्य प्रदेश के लोग पूरे महाराष्ट्र और हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर वारकरी संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय की परंपरा की शिक्षा दीक्षा देते हैं। मैं स्वयं स्वयं श्रीमद भागवत कथा, राम कथा, देवी भागवत कथा, शिव महापुराण कथा, श्रीमद भगवत गीता, ज्ञानेश्वरी तुकाराम जी महाराज जी की गाथा, इन सभी ग्रंथों के माध्यम से वारकरी कीर्तन करते हुए हिंदी भाषा में, मराठी भाषा में, जहां पर समाज हो तो कुछ अंग्रेजी भाषा में, संस्कृत भाषा में हम वैष्णव संप्रदाय का प्रचार करते हैं, और आगे चल के भी इस कार्य को हम बढ़ाते रहेंगे, और ज्ञानेश्वर महाराज जी का नाम और मध्य प्रदेश का सौसर विकास खंड में बसा हुआ ए नगर देवी ज्ञानेशा जी, इसका नाम हम रोशन करते रहेंगे।
महाराज जी, आपसे एक अंतिम प्रश्न। जैसा कि आज देवशायनी एकादशी संपूर्ण भारतवर्ष में लोग उपवास कर रहे हैं, लेकिन कल इसका जब उपवास छोड़ेंगे तो उसमें गोविंद फल, जिसे रान भाजी या फिर वाघाटे भी कहते, इसका बड़ा महत्व है, हम इस महत्व के बारे में आपसे जानना चाहेंगे।
हाँ हाँ, हमारे धर्मशास्त्र में हर एक ऋतु में आने वाला फल और सब्जियां, इसका अलग अलग महत्व रखा जाता है। इसमें वाघाटा मराठी में बोलते हैं, इसको गोविंद फल कहा जाता है। गोविंद फल का ये महत्व है कि आने वाला 4 माह का काल, और उसमें अभी ऋतु परिवर्तित हुआ, अब जो है वर्षा ऋतु आरंभ हो गया। तो वर्षा ऋतु आने से कुछ बीमारियां कृमि के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हुए हमारे दिल और दिमाग को बिगाड़ सकते हैं। तो फिर ऐसा यदि समय यदि आता है तो हमारे शरीर और बुद्धि को तंदुरुस्त रखने के लिए हर एक ऋतु में अलग अलग फल आया है। तो ये गोविंद फल जो आया है देवशयनी एकादशी छोड़ते समय द्वादशी के पावन पर्व काल पे इसको यदि सब्जी के माध्यम से सेवन करते हैं तो हम में ऐसी रोग प्रतिकार शक्ति निर्माण हो जाती है कि आने वाले ऋतु में ग्रीष्म अपने वर्षा ऋतु में जो कुछ निसर्ग में परिवर्तन आएगा उस परिवर्तन आने के बाद हमारी तबीयत के ऊपर जो बुरा असर पड़ने वाला है वो पड़ने नहीं देता और एक रोग प्रतिकारक शक्ति हमारे में तैयार हो जाती है और रोग प्रतिकार शक्ति तैयार हो जाने के कारण हम तंदुरुस्त रहते हैं दिल से और दिमाग से। इसलिए देवशयनी एकादशी का व्रत छोड़ते हुए पारणा करते हुए उस भोजन के समय इस सब्जी में ये फल खाना बहुत जरूरी होता है और ये फल के सेवन करने से हमारा आरोग्य हर तरफ से तंदुरुस्त रहता है। इसलिए ये फल अवश्य खाना चाहिए। ये ऋतु और आने वाले भविष्य के लिए हमारे संतों ने, हमारे आरोग्य शास्त्र ने, हमारे वेद ने ऐसा हमें संकेत दिया है।
बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका कि देवशयनी एकादशी पर मोबाइल वाणी के साथ रूबरू होकर एक महत्वपूर्ण संदेश आपने दिया। इसके लिए मोबाइल वाणी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। राम कृष्ण हरि।
राम कृष्ण।